ओम शांति। एक बार हम सभी मिलकर उस रीति से ओम शांति या ओम की ध्वनि करेंगे, जैसा हम सब ने सुना है कि यज्ञ के आदि में बाबा और सारे ब्राह्मण वत्स मिलकर किया करते थे। अंदर एक गहरी श्वास लेंगे और उस श्वास को निकालते हुए ओम की ध्वनि करेंगे, फिर दूसरी गहरी श्वास लेकर उसे निकालते हुए शांति की ध्वनि करेंगे। शांति का महामंत्री है जो हम सबको संपूर्णता के नजदीक ले जाता है। और जब ओम शांति के अर्थ में स्थित होते हैं तो उस संपूर्णता की अनुभूति भी करते हैं और साथ ही साथ दूसरों को भी उसकी अनुभूति कराते हैं। आज की मुरली में भी बाबा ने इस बात को ही लिया है। मुरली का जो सोल भी था उसमें क्या था, मुरली का जो मुख्य पॉइंट था आज का, हमारा लिंक जो है बाबा के साथ सदा बना रहे। लिंक माने संबंध, जोड़। और जब लिंक ये सदा बना रहता है तो शक्ति का संचार प्रभावित होता रहता है। और इसीलिए बाबा ने आज कहा कि ध्यान रहे बच्चों को कि ये लिंक कभी भी टूटे नहीं। जब कभी ये लिंक आत्मा परमात्मा का टूट जाता है तो शक्ति का बहना बंद हो जाता है, रुक जाता है, स्लो हो जाता है। वैसे भी हम सब जानते हैं कि लिंक ये जो होता है, कोई भी चीज कंटिन्यूअसली, भले चाहे धीरे धीरे लेकिन कंटिन्यूअसली प्रभावित होती है तो वो शक्ति का संचार करती है लिंक। और वैसे भी देखते हैं कोई बीमार होता है बहुत तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, पहले जाके सब टेस्ट करके उसको ड्रॉप ड्रिप्स जो है वो चढ़ा देते हैं, जिससे ग्लूकोज या लिक्विड जो भी इंजेक्शन डॉक्टर शरीर में डालना चाहे वो धीरे 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 लेकिन कंटिन्यूअसली प्रभावित होता है। और जब कंटिन्यूटी होती है तो पेशेंट भी शक्ति की अनुभूति करने लगता है। जैसे और भी होते हैं, गैस होती है, हमें याद है जैसे बताया जा रहा था आपको परिचय में, इंजीनियरिंग करने के बाद हम ONGC जो तेल निकालने की कंपनी है, तेल और गैस जमीन से, उसके अंदर हमने ज्वाइन किया था और उसमें कार्यरत रहे। तो हम लोगों को हिस्ट्री में बताया गया था, और आप लोग तो उधर से ही आए हैं, पंजाब जोन जिसमें पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश आदि ये सब आता है, तो हम लोगों को एक केस हिस्ट्री पढ़ाई गई थी जनरल की हिमाचल में ज्वालामुखी है ना जगह, शायद हो सकता है वहाँ से कुछ आए भी हों सेवा में, तो ज्वालामुखी जो है तो उस एरिया में, वहाँ पर बहुत साल पहले 1950s के लेट 50s या अर्ली 60s की बात है, तो तब ONGC बना था और वहाँ सर्वे हो रहा था। तो वहाँ ज्वाला जी का एक मंदिर है, आप सबको मालूम भी है, वहाँ एक पत्थर मूर्ति है, उसमें से हमेशा ज्वाला निकलती रहती है और कंटिन्यूअसली ज्वाला निकलती रहती है। तो वहाँ जब हम ONGC के लोग सर्वे कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि ये तो कंटिन्यूअसली ज्वाला निकल रही है और वहाँ पर नीचे बहुत सारे गैस के भंडार हैं। तो उन्होंने वहाँ पर बताया कि भाई ये तो, लोगों से पूछा तो लोगों ने मंदिर की बहुत महानता बताई और कहा ये तो ज्वाला हमारे दादा परदादा उनके भी दादा उस टाइम से निकल रही है, कई सौ वर्षों से, और बहुत ऊंची महानता है देवी की, क्योंकि ये तो एक भक्ति मार्ग में बड़ी विशेष बात है कि ज्वाला एक सेकंड भी कभी बुझी नहीं। तो हमारे लोगों ने कुछ बताया वहाँ पर ONGC वालों ने कि भाई ये तो नीचे से गैस के भंडार हैं वो निकल रहे हैं, इसमें देवी की क्या महानता। तो वहाँ के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचा, थोड़ा डिफरेंस भी हुआ, कहाँ सुनी हुई, और ये बात और ऊपर हेडक्वार्टर तक पहुंची। तो वहां से फिर बड़े ऑफिसर वगैरह आए, उन्होंने बहुत प्रेम से स्नेह से आदर से उन लोगों को वहां पर बताया कि देखो ये हम अम्बी देवी को मानते हैं, हम भी हिंदू हैं, और ये आपको विज्ञान का सत्य बता रहे हैं। तो उन्होंने वहां पर जहां पर देवी की मूर्ति थी तो देखा उसके नीचे गैस का चैनल जैसे आ रहा है, जमीन से गैस निकल रही है और किसी ने देवी की मूर्ति जैसे बना दी थी। तो उन्होंने उसमें एक वाल्व लगाया जो बंद करने का खोलने का, और बताया वहां पर सरपंच को बुलाया कि आप ही इसे बंद करो और खोलो। तो सरपंच ने जब उसे घुमाया बंद किया तो गैस आनी बंद हुई, तो ज्वाला निकलनी भी बंद हो गई। फिर उसे बताया, सरपंच को बोला कि आप इसे उल्टी डायरेक्शन में घुमाओ, घुमाया गैस आनी बंद हुई और फिर उसे जला दिया गया गैस को, तो फिर जलने लगी ज्वाला। तो ये कंटिन्यूटी की बात है कि एक सेकंड के लिए भी अगर कंटिन्यूटी या निरंतरता बंद हो जाती है तो शक्ति का प्रवाह रुक जाता है। इस केस में शक्ति वो गैस के रूप में है ज्वाला, और बाबा तो लिंक की बात करता है स्पिरिचुअलिटी की। और इससे हमें ये भी शिक्षा मिलती है, भले हम सत्य बात किसी को बताएं लेकिन सत्यता हो लेकिन सभ्यता भी हो, प्रेम से आदर से स्नेह से सत्कार से अगर कोई बात किसी को बताई जाती है तो वो स्वीकार करने की उसकी गुंजाइश ज्यादा रहती है। और भले हम सत्य भी हों लेकिन अगर उसमें अहंकार है, कहीं पर बहुत ही ज्यादा जोश है, तो उस बात को दूसरे को स्वीकार करना भी कठिन हो जाता है। और ये ही बात आज के विषय में विशेष करके है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा में, क्योंकि संपूर्णता के समीपता की अनुभूति की जो बात होती है ना, तो वो उसको अनुभव करने वाले, अनुभूति करने वाले ब्रह्मा बाबा सबसे पहले थे। और ब्रह्मा बाबा ने जो अनुभूति की वो ही हम सब ब्राह्मण वत्सों को भी करनी है। तभी आज का विषय, ये कल का वरदान था, कल जिन्होंने मुरली सुनी होगी पढ़ी होगी, कि ये वरदान में ही था कि संपूर्णता के समीपता की अनुभूति करने के लिए कैसे, हाउ टू फॉलो ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा बाप समान एग्जाम्पल बने। ये कल का वरदान था, इसीलिए कल का वरदान के ऊपर ही ये टॉपिक विशेष रखा गया है। तो हम सब भी चाहते हैं कि हम सब भी संपूर्णता की तरफ बढ़े, इसीलिए तो यहाँ बैठे हैं कि बस संपूर्णता की तरफ बढ़ते बढ़ते हमारे कदम बढ़ते रहें और हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर लें। जैसे हमारे मीठे ब्रह्मा बाबा ने, पिताश्री बाबा ने अपनी संपूर्णता को प्राप्त किया, हमें ये सौभाग्य मिला है ब्रह्मा बाबा के साथ रहने का और उनकी संपूर्णता की अवस्था को देखने का नजदीक से। क्योंकि जब बाबा ने शरीर भी छोड़ा 18 जनवरी 1969 को, उस समय अंतिम दो दिन 17 और 18 जनवरी को हम मधुबन में ही थे और अपनी आंखों से उन बात की अनुभूति करी, देखा, सुना, उसी को ही हम आज कुछ चीज आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। क्योंकि हम सब की भी वही मंजिल है कि हम सब भी संपूर्णता को प्राप्त करके और ऐसे एग्जाम्पल बने जैसे ब्रह्मा बाबा, हम बच्चों के सामने एग्जाम्पल बने, ऐसे ही हम बच्चे भी और जो बाबा के आने वाले बच्चे हैं या दूसरे हैं, उन सब के सामने हम सब भी एग्जाम्पल बने, उदाहरण मूरत बने। और फिर जब उदाहरण मूरत एग्जाम्पल बनेंगे तो क्या होगा, वही बाबा ने लिंक का भी बताया है, ये कब होगा, ये ब्रह्मा बाबा संबंधित 7-8 बातें हैं जो आज हम शेयर करेंगे आपस में। तो पहला बाबा ने यही बताया है कि ये लिंक तो टूटे ना, लेकिन सबसे उससे भी बड़ा लिंक है हिम्मत का लिंक। अंत तक भी कभी भी हिम्मत का लिंक हमारा ना टूटे, क्योंकि जीवन में अनेक परिस्थिति आएंगी, ज्ञान मार्ग में भी चलते हैं तो बहुत सारे मान अपमान, निंदा स्तुति, यानि लाभ, परिवार का पेपर, परिस्थितियों का पेपर, शरीर का पेपर, बहुत सारे पेपर आते रहते हैं। तो कई बार ऐसी संभावना रहती है व्यक्ति हिम्मतहीन अपने को अनुभव करने लगता है। तो बाबा ने कहा एक तो ये रहे कि हिम्मत का लिंक अंत तक कभी भी न टूटे, जैसे ब्रह्मा बाबा के सामने भी कितनी परीक्षाएं आई, हम सब ने भी बाबा की हिस्ट्री में पढ़ा है, यज्ञ के इतिहास में पढ़ा है, ऐसी ऐसी भी परिस्थितियां आई कि यज्ञ में भोजन नहीं था खाने का, 300 वत्स बैठे हुए हैं वो, लेकिन बाबा ने कैसे हिम्मत नहीं हारी और कैसे हर परिस्थिति में भी यज्ञ को खिवैया बन करके यज्ञ की नैया को पार लगा दिया। वो ही बाबा का सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने है। इसलिए एक तो हम इस बात को कि हिम्मत अंत तक भी हिम्मत रख के चलते रहें, कोई भी पेपर आए, कैसा भी आए, लेकिन एक बात बुद्धि में सदा रहे, विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये सफलता मैंने कल पहले भी पाई थी, अभी भी बाबा मुझे सफल बना रहा है और कल्प कल्प बाबा मुझे सफल बनाता रहेगा। तो एक तो ये है, बाबा चाहता है हम बच्चों से कि हिम्मत कभी भी हमारी कम ना हो। और इसके लिए और बाबा ने अनेक बातें बताई हैं, सबसे इम्पोर्टेंट कुछ बात बताई हैं, जीवन में जो है बैलेंस रखने की, आज कल के वरदान के अंदर भी था। ब्रह्मा बाबा को क्या देखा, बाबा के सामने बच्चे जाते थे, बस बाबा को सेवा का समाचार, अपने अनुभव की बातें सुनाते थे, कोई प्रश्न पूछते थे, बस बाबा सुनते सुनते भी जैसे एकदम क्या हो जाते थे, सुनते सुनते भी एक तरफ अलर्ट है, बिल्कुल रिलैक्स होके बाबा एक घंटे की बात भी 5 मिनट में जैसे सुन करके पूरा कर देते थे और बच्चों को संतुष्ट कर दिया करते। तो एक ये भी है कि जीवन में सफलता का एक महामंत्र है, वो एक अक्षर में अगर हम देखना चाहें तो वो है बैलेंस। बैलेंस अंग्रेजी का शब्द है, तो दो विपरीत चीजों में भी बैलेंस रहे। कौन सी बैलेंस? हाँ, मानो एक तरफ मनुष्य है, मनुष्य का भी वैज्ञानिक वगैरह बताते हैं कि भाई ब्रेन है जो लेफ्ट एंड राइट ब्रेन होता है, ब्रेन के थ्रू मन जो है मन का काम है सोचना, ब्रेन के थ्रू सोचता है। तो मन जो सोच रहा है तो लेफ्ट साइड का जो ब्रेन है, बाईं तरफ और दाईं तरफ दो हिस्से हैं मस्तिष्क के ब्रेन के, तो उनके दो के अलग अलग कार्य हैं। लेफ्ट जो है वो साइंटिफिक ब्रेन है, लॉजिकल है, मैथमेटिकल है, ऐसा ब्रेन है, और जबकि राइट साइड का जो है वो है एक स्पिरिचुअल कह सकते हैं, वैल्यू ओरिएंटेड कह सकते हैं। और इस रीति से जो लेफ्ट और राइट का बैलेंस चाहिए, बायां और दायां मस्तिष्क का बैलेंस यानी सोचने की शक्ति, जीवन में क्या हो दोनों चीजों का बैलेंस हो। जैसे बाबा का था, बस सुन भी रहे हैं लेकिन सुनते सुनते भी दूसरों को जो अनुभव करा रहे, वो बात मैं खास शेयर करता हूँ इस बात की कि बाबा से वैसे तो बहुत बार मिले, अनेक बार भी मिलते थे, और पहले बाबा मिलते थे तो पहली मीटिंग से ही बच्चे एक तरफ तो मिलते थे, आंखें देखती थीं, लेकिन दूसरी तरफ अनुभूति करते थे। बस बाबा के सामने बच्चे आते थे, बस बाबा हाथ फैला के आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे, आओ स्वीट चिल्ड्रन, ऐसे बाबा करते थे और बच्चे आते थे बाबा की बाह में समा जाते थे। तो ये तो एक पितृवत्र प्रेम भी जो है वो होता था, लेकिन आत्मा अनुभूति क्या करती थी कि जो आत्मा की अनुभूति बाबा बच्चों से चाहता है। बाबा ने, आप सबने इतिहास में पढ़ा है ना, बाबा ने बहुत प्रैक्टिस करी थी लिख लिख के भी कि मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है, निर्मला आत्मा है। जसोदा बाबा की युगल का नाम था, निर्मल शांता दादी उनके बच्चे का नाम, नारायण बच्चे का नाम लड़के का, ये आत्मा ये आत्मा लिख लिख के पक्का किया था। तो उससे क्या बाबा को इतना पक्का हो गया था आत्मा का पाठ कि बाबा जिसको भी देखते थे, दृष्टि देते थे, वो भी आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाता था। तो एक तरफ बाबा यही कहते थे आओ बच्चे, मीठे बच्चे, और फिर बच्चे जब बाह में चले जाते थे थोड़े समय बाबा बिल्कुल वो आत्मिक स्वरूप की अनुभूति करते थे, और फिर बाबा ऐसे थपथपा के कहते थे ऐसे हाँ बच्चे आओ आओ, क्योंकि बच्चे तो एकदम थोड़े समय के लिए सही विदेही स्थिति का अनुभव करते थे, अशरीरी स्थिति का। अभी तो फिर भी उसके लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उस समय तो बस बाबा दृष्टि दी तुरंत बच्चे उड़ जाते, और उड़ के जब ये अनुभूति, फिर बाबा कहते हाँ बच्चे आओ देह में। जस्ट कोई आत्मा जाती नहीं है, लेकिन जैसे कॉन्शियसनेस को विड्रॉ कर लेती है, अशरीरी स्थिति में आ जाती है, फिर बच्चे जैसे महसूस करते थे हाँ हम बाबा की बाह में है, गोदी में है। बाबा टोली खिलाते थे, हालचाल पूछते थे, क्या परिचय है। उसके बाद एक जाता था, दूसरा आता था, फिर वन बाय वन सब एक के बाद एक आते थे, और सब विदेही और अशरीरी स्थिति का अनुभव क्यों करते थे? क्योंकि टोली तो कोई भी खिला सकता है, कोई भी खाते हैं, लेकिन चूंकि बाबा उस स्थिति में स्थित होके, और बाबा ने ये अभ्यास किया हुआ था पक्का, मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा है, तो जिसको भी दृष्टि देते थे वो विदेही हो जाता। तो एक तो हमें भी ये अभ्यास की संपूर्णता के समीपता की अनुभूति, कि जो व्यक्ति जितना जितना संपूर्णता के समीप जाता जाएगा ना, उतना उतना उसे ये भी अनुभूति होगी, कौन सी, जब चाहे मैं देह में आऊं, जब चाहे देह से न्यारा हो जाओ। ये साधारण बात नहीं, इसमें बहुत अभ्यास चाहिए। ब्रह्मा बाबा ने भी बहुत अभ्यास किया था। हम लोग देखते थे जब पार्टी टीचर आती थी, पार्टी को लेके आती थी, 5, 7, 8, 10, 15 जितने भी लोग होते थे, तो बस टाइम मुकर्रर होता था कि 10 बजे मानो दिल्ली पार्टी मिलेगी, 10:30 बजे बम्बई पार्टी, 11 बजे कलकत्ता पार्टी, ऐसे अलग अलग टाइम होते थे। तो बाबा 3 जगह जो जिन्होंने पांडव भवन देखा है, पुरानों ने देखा है, या तो बाबा अपने कमरे में मिलते थे अगर 2-3 लोग होते थे, अगर 5, 6, 7 होते थे झोपड़ी में भी मिलते थे, या अगर और भी ज्यादा 10 से ज्यादा होते थे तो हिस्ट्री हॉल में। ये 3 जगह बाबा के मिलने की होती थी। तो बस संदेशी नहीं बल्कि टीचर जो होती थी पार्टी को लेके अपने टाइम के मुताबिक बाबा के पास गई। बाबा देखती थी, बाबा तो बैठे हैं ध्यान में, आंख खुली हुई है, कोई साक्षात्कार में नहीं है, लेकिन जैसे विदेही स्थिति में बैठे। फिर वो जाके कहती थी बाबा बाबा, तो बाबा को जैसे ना एकदम, हाँ विदेही होते थे जो देह से न्यारी स्थिति में होते थे, फिर जब आत्मा जैसे देह में कॉन्शियसनेस में उस जागृति में आती थी, तो फिर बाबा कहते हाँ हाँ बच्ची बोलो, कि बाबा फलानी पार्टी आई है, ये जो आपने टाइम दिया था। बाबा कहते थे हाँ हाँ बच्चे पार्टी को ले आओ। पार्टी आती थी, बाबा के सामने बैठती थी। तो बाबा जब चाहे देह में से न्यारे हो जाते थे, जब चाहे देह में आते थे। तो ये एक अभ्यास उसके लिए बहुत जरूरी है, संपूर्णता के लिए, कि हम भी जब चाहे देह से न्यारे हो जाएं, जब चाहे पार्ट बजाने के लिए देह में आए, पार्ट बजाया और जब थोड़ा फ्री हुए तो फिर देह से न्यारे हो जाए, जो बाबा को हम लोग हमेशा देखते। बस एक एक समय, एक एक सेकंड, एक एक मिनट भी बाबा का इस रीति से सफल होता था। फिर एक पार्टी जाती थी, दूसरी पार्टी के आने में 2-4 मिनट का टाइम होता था, तो फिर उस वक्त ये करते, बस सब यही एक ही बात का अनुभव करते थे, बाबा जैसे देह से न्यारा है। तो ऐसे ही देह से न्यारेपन की अवस्था, और इसी को ही कहा गया जब चाहे हम आवाज में आए, जब चाहे हम आवाज से न्यारे हो जाए, बस साइलेंस में चले जाए, और जब चाहे इस इंस्ट्रूमेंट का, शरीर का आधार लेकर के हम पार्ट बजाए। एक ये अनुभव बाबा ने बताया जो ये पक्का होता। और संपूर्णता के समीपता के लक्षण क्या होंगे, उसकी अनुभूति क्या होंगे, ये खुद ही वो अनुभूति नहीं करेगा व्यक्ति, दूसरे लोग भी उनसे ये ही अनुभूति करेंगे कि ये देह से न्यारे हैं और अभी देह में पार्ट बजाने के लिए आए हैं, नहीं तो ये देह से न्यारी आदमी। और बाबा को क्या देखा, जो बाबा कहते हमें याद है, कुछ साल पहले जब गुलजार दादी जी की तबीयत अच्छी थी, यहाँ थी, तो दादी एक बार संदेश लाई थी कि बाबा बच्चों को एक सर्टिफिकेट तो सब बच्चों को देता है, बहुत मुख्य जो भी बच्चे बैठे हुए थे ज्यादातर, सब बच्चों को एक सर्टिफिकेट देता है, कौन सा, कि बच्चों में अब विकारी संकल्प तो नहीं चलते, ये सर्टिफिकेट बाबा देता है, लेकिन एक सर्टिफिकेट लेने के लिए बच्चों को अभी और मेहनत करने की जरूरत है, कौन सा, व्यर्थ संकल्प। विकारी संकल्प तो चलने बंद हो गए हैं, लेकिन व्यर्थ संकल्प बच्चों के अभी भी चलते हैं, इसलिए बाबा ने कहा कि व्यर्थ संकल्प भी न चले, उसके लिए क्या करना है, बस बच्चों को ये संकल्प तो मन में चलते हैं, तो मन को, मन के ऊपर अपनी अथॉरिटी बच्चों को दिखानी है। कैसे, आप सबको भी याद होगा, न मालूम हो वो तो बहुत बाबा को जब ये ज्ञान हुआ, चारों बाबा का जीवन पूरा परिवर्तित हो गया, यज्ञ शुरू हुआ। लेकिन बाबा एक अनुभव करते थे कि मन जो है अभी भी भाग जाता है। हम सबका अनुभव है, मन भक्ति में कह देते हैं मन बड़ा चंचल है, क्या करें, मन भाग जाता है। तो बाबा ने क्या किया, मन को पत्र लिखा। मन को पत्र लिखा बाबा ने, हे मन, मैं आत्मा राजा हूं, तू मेरा मंत्री है, तुझे मेरे कहने पर चलना चाहिए, क्योंकि मैं राजा हूं तू मंत्री है। लेकिन तू मंत्री ज्यादा शक्तिशाली हो गया, तुमने मुझ आत्मा राजा को कमजोर कर दिया। तो क्या हुआ, जब मैं बहुत कमजोर हो गया तो मैं तेरे कहने पर तुम्हारे पीछे पीछे भागता रहा, जिधर जिधर तुम मुझे ले जाते रहे मन, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आता रहा। लेकिन फिर दूसरे पहरे में बाबा ने लिखा कि लेकिन हे मन, अब मैं तुम्हें कह देता हूं कि अब मैं आत्मा राजा पुनः शक्तिशाली हो गया हूं और हो रहा हूं, अब मैं तेरे कहने पर नहीं चलूंगा, तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मैं राजा हूं और तू मंत्री है, तू जो है मेरा कर्मचारी है, मैं राजा। तो उस नशे में बाबा ने जब अपने को एस्टेब्लिश किया, अपने को स्थित किया, तो बस उसके बाद से बाबा ने यह अनुभव किया कि मन बाबा के ऑर्डर में है। ऐसी पत्र बाबा ने बुद्धि को भी लिखा, हे बुद्धि, तू भी मन के कहने पर, मन का साथ देकर तुमने मुझे कमजोर कर दिया और तुम दोनों ने मिलकर मुझे बहुत नचाया। मैं राजा आत्मा भाग करके तुम्हारे पीछे पीछे भागता रहा, लेकिन अब मैं तुझे भी कह देता हूँ हे बुद्धि, कि अब तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा। ऐसे बाबा ने अपने को ना जो है सोमान की सीट पर सेट किया। लौकिक में भी होता है, कोई आदमी ऑफिसर है बड़ा, कोई भी एक जगह है, पोस्टिंग है, सब जगह उसके लोग उसकी बात मानते हैं क्योंकि उसकी अथॉरिटी चलती है। लेकिन अगर मानो उसका ट्रांसफर हो जाए, दूसरी जगह चला जाए, या पॉलिटिकल लीडर है वो हार जाए, सीट पर ना रहे, तो क्या होगा, कोई वो बैठ करके अगर कुछ ऑर्डर चलाना चाहे तो कोई उसकी ऑर्डर मानेगा, नहीं मानेगा, क्योंकि वो सीट पर सेट नहीं, उस सीट की अथॉरिटी उसके पास नहीं। ऐसी हम चाहते तो हैं मन को अपने अनुकूल चलाना, मन मेरे सोचे बिना वैसा न सोचे जो मैं नहीं चाहता, मन मेरे कहने पर चले, लेकिन मैं अगर अपने सोमान की सीट पर अगर सेट नहीं होता हूं तो मन भी मेरा कहना नहीं मानता। इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि मन हमारा कहना माने और हम संपूर्णता के समीप चलते जाएं, जैसे ब्रह्मा बाबा चले और अचीव किया, तो वो संपूर्णता के समीप जाने के लिए पहले मन को हमें अपने वश में करना, और उसके लिए बाबा ने बताया मन बुद्धि ये आपके अधिकार में रहे, उसके लिए क्या करो, अपने स्वमान की सीट पर पहले सेट हो, और स्वमान पे सेट होके जब हम मन को ऑर्डर करेंगे तो मन फिर हमारी बात पूरी अच्छी तरह मानेगा। एक तो हम जो बाबा ने ये करके दिखाया, अवेयर जब, और जब ऐसी स्थिति हो जाती है, मन पे हमारा नियंत्रण होने लगता है, धीरे 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 करके ही ऐसी स्थिति आती है, बहुत समय का अभ्यास चाहिए, तो क्या होगा, इस स्थिति को भक्ति में भी क्या कहा गया है, मन जीते जगत जी। और ये हमने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा ब्रह्मा बाबा को, 1962-63 में जब ज्ञान में आए तो बाबा समय देते थे, क्या सेवा है, क्या पुरुषार्थ है, आदि आदि, और फिर बाबा उस पर डायरेक्शन देते थे, करेक्शन करते थे। लेकिन 17 जनवरी 1969 बाबा के अव्यक्त होने से दो दिन पहले जब हम भी मधुबन में पहुंच गए, आसाम में पोस्टेड थे और आसाम से सीधा मधुबन जब पहुंचे तो हमने देखा, हम तो नॉर्मल पहले जैसे मिलते थे कि बाबा से मिलेंगे, ये बात बताएंगे, बाबा उसका समाधान देंगे। बस बाबा के सम्मुख गए, बाबा ने दृष्टि दी और दृष्टि दे करके बाबा ने कहा, अच्छा बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो ऐसा हो जाए। यानी कि हमें एक अक्षर भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ी जैसा पहले चला करती थी, लेकिन बस बाबा ने देखा, नैनों से ही मन की बात पढ़ ली और प्रश्न भी बता दिया क्या पूछने आए हैं और उसका समाधान भी दे। ऐसा एक बार ही नहीं हुआ, एक बार तो चलो बाई चांस हो सकता है, दो दिन में 17 और 18 जनवरी को 6-7 बार ऐसा हुआ। जब जब बाबा के पास गए, बाबा ने मन में क्या चल रहा है वो भी बता दिया बिना हमारे एक अक्षर बोले और उसका उत्तर भी समाधान भी दे। तो ये है मन जीते जगत जीत की स्थिति। बाबा ने जो प्राप्त कर ली थी, जिसने अपना मन जीत लिया होगा वो दूसरे के मन की बात को तुरंत ही पढ़ सकता है और उसका समाधान कर सकता है। तो संपूर्णता के लिए एक ये आवश्यक है कि हम अपने मन के ऊपर इतना नियंत्रण करें, संकल्पों के ऊपर, विचारों के ऊपर, अपने भावनाएं जो हैं उन सब के ऊपर, और जब जितना जितना ये होता जाएगा उतना उतना हम दूसरे के मनोभावों को सहज ही पढ़ते जाएंगे, पढ़ सकेंगे और बाबा की तरह उनका भी समाधान कर सकेंगे। एक संपूर्णता के समीपता का एक ये लक्षण है जो देखा। और क्या देखा? जब आत्मा संपूर्णता के निकट होती है तो संपूर्णता के निकट का भाव क्या है, बाबा ने हम सबको बताया है। अभी हम सब आत्मा इस शरीर में है, ना तो ये शरीर पवित्र है ना आत्मा पवित्र है। शरीर भी विकारों की उत्पत्ति है और आत्मा भी, इतना 84 जन्म लेते लेते आत्मा भी पतित बन गई, इसीलिए आत्मा भी अपवित्र और शरीर भी अपवित्र। और जितना हम संपूर्णता के नजदीक होंगे उतना उतना हमारी आत्मा भी पवित्र होती जाएगी और उसके साथ साथ ये शरीर जो है प्रकृति के 5 तत्वों का बना शरीर, ये शरीर भी पवित्र होता जाएगा। और इसीलिए वैज्ञानिक लोग भी एक ऑरा नापने का यंत्र निकाला है। किरलियन नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने ऐसा कैमरा बनाया कि व्यक्ति का फोटो लेते हैं तो फोटो के साथ साथ उसका वो ऑरा भी आ जाता है। ऑरा माने लाइट का ताज, जो बाबा कहते हैं ना, जितना जितना पवित्र होते जाएंगे उतना उतना वो लाइट का ताज व्यक्तियों का अच्छा आता जाए। जो पवित्र होते हैं, शांत होते हैं, सत्यवादी होते हैं, जो गुणों से भरपूर होते हैं, वो व्यक्तियों का ऑरा जो होता है लगभग सफेद या येलो गोल्डन कलर का होता है। और जो विकारी होंगे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या निगेटिविटी से जो भरपूर, जो आज की कलियुगी दुनिया सारी है, तो उनका ऑरा डार्क कलर का और हेजी होता है। हेजी माने उनकी बाउंड्री वेल डिफाइंड नहीं होती। लेकिन जो ज्ञानी आत्माएं होती है, मुझे भी अपने ईश्वरीय सेवा के सिलसिले में विश्व के अनेक अनेक देशों में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जब मैं रशिया में था 3-4 साल पहले, तो रशिया में बहन जी ने उसको बुलाया, किरलियन फोटोग्राफी वाले को, और उसने जो है इंस्ट्रूमेंट, काफी उनके इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो लेके आया और वहां पर हम लोगों का ये ऑरा भी उसने नापा। और वो उसने ये बताया, उसके साथ पूरा एक दिन बिताने का सौभाग्य मिला, तो उसने बताया मैंने दुनिया में कई जगह, बहुत सन्यासी मठ पंथ सब जगह मैं गया हूँ, वो यहाँ आते हैं तो उनका ऑरा नापते हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमारी वाले जो आते हैं और उनका जब हम ये ऑरा नापते हैं तो उनका ऑरा जितना श्वेत साफ उज्जवल और वेल डिफाइंड बहुत अच्छा होता है, उतना किसी का नहीं। तो ये जैसे देखो विज्ञान भी हमारी प्रत्यक्षता करता जा रहा है, क्योंकि हम जितना भी बोले लेकिन जब विज्ञान और इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे तो दूसरे उस बात को डिनाई नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना है, हमारा ऑरा और लाइट का ताज और वो बिल्कुल बहुत अच्छा हो, जैसा देवताओं के पीछे दिखाते हैं, गुरु नानक देव के पीछे लक्ष्मी नारायण सीता राम आदि आदि जितने महावीर स्वामी गौतम बुद्ध पवित्र आत्माओं के पीछे जो दिखाते हैं, हमारा बस वैसा ऑरा बने। और उसके लिए यही जरूरी है कि हम भी अंदर बाहर साफ, जो बाबा कहता है सच्चाई और सफाई, जितना अंदर की भी सत्यता और सफाई होगी उतना बाहर की भी ऐसी सच्चाई सफाई भी। एक ये हम धारण करते रहे। नेक्स्ट और क्या, जो बाबा ने कहा एक बात और, कि हम सबका जो फाइनल, कोई विद्यार्थी साल भर जितना पढ़े लेकिन अगर एग्जाम ही नहीं देगा या एग्जाम दिया और उसमें अच्छा नहीं करा, पढ़ा चाहे जितना भी हो तो मार्क्स तो उसके आधार पर मिलेंगे जो एग्जाम में लिखा है या एग्जामिनेशन में उसकी कैसी परफॉर्मेंस रही है। तो इसीलिए गायन है अंत मति सो गति का गायन। अंत में जैसे हमारी मति होगी वैसी ही गति होगी। और अंत में इसीलिए बाबा कहता है और कोई भी याद ना आए सिवाय बाबा के, न कोई व्यक्ति न वस्तु न वैभव न कोई भी संसार की चीज, क्योंकि वो याद आई तो वैसा जन्म लेना पड़ेगा, वैसी मति होगी। और उस समय अंत में जैसे मति होगी वैसा ही अगला पुनर्जन्म हो जाएगा, गति होगी। तो इसके लिए ये जरूरी है, क्या शरीर तो सबको छोड़ना है लेकिन ऐसा हमारा पुरुषार्थ हो कि हम अपनी इच्छा से शरीर छोड़े। ऐसे नहीं कि बस कोई बीमारी आई या कोई जो बाबा ने कहा अर्थक्वेक होगा, सुनामी आएगी, भूचाल और आएंगे, फ्लड बाढ़ आएंगे, हजारों लाखों मरेंगे, कोई एटम बम गिरा, कोई बादल फट गया क्लाउड, अगर उसमें मरे दुनिया और हम भी उसी में मरे तो हम में और दुनिया वाले में फर्क क्या हुआ। हमारा वो पुरुषार्थ होना चाहिए जो ब्रह्मा बाबा का था, हमने अपनी आंखों से देखा बाबा को, जैसे एक दो दिन पहले बहुत क्लियर आभास हो गया था कि अब ये आत्मा शरीर छोड़ के जाने वाली है ब्रह्मा बाबा को। और इसीलिए बाबा ने अंत समय तक सारे वो काम निपटा लिए जो अधूरे थे, पेंडिंग पड़े हुए थे, कोई भी। और जैसे बाबा ने कहा 18 जनवरी को क्लास सुबह योग के बाद यीशु दादी को कि आज जितने भी पत्र हैं उनके उत्तर लिखवा लो, कोई भी पत्र अधूरा न रह जाए। तो यीशु दादी ने सारे पत्र लिखा लिए, नहीं तो बाबा को तो मालूम था ये आज अंतिम दिन है, अगर पत्र बच्चों ने लिखा और उनका उत्तर नहीं गया तो बच्चों के संकल्प चलेंगे। सारे पत्रों के उत्तर दे दिए। ऊपर जो एक नक्की लेक के पास हमारा म्यूजियम है, उस समय वो बिल्डिंग लेने की बात चल रही थी क्योंकि वहाँ पहले प्रदर्शनी लगाई थी और प्रदर्शनी बहुत सफल रही थी, बहुत लोगों ने आके प्रदर्शनी देखी, तो सबका विचार था बाबा वो बिल्डिंग ले ली जाए। लेकिन तब हमारा यज्ञ इतना संपन्न नहीं था और काफी बातें थी तो वो फाइल कई दिनों से पेंडिंग पड़ी हुई थी। लेकिन अंतिम दिन बाबा ने उस फाइल को भी क्लियर किया, उसको लेकर के उसे भी सेवा स्थान म्यूजियम का, ऐसा म्यूजियम वर्ड तो नहीं था शब्द, लेकिन सेवा का परमानेंट साधन वहां पर बनाया जाए, वो भी हुआ। रोज रात्रि क्लास होती है मधुबन में लगभग 8:45 बजे, भोजन वोजन करके सब आते हैं, 9 बजे क्लास होती है रात को। लेकिन उस दिन बाबा ने शाम को 6:30 बजे ही कहा भाई को बुला के, जमुना प्रसाद भाई हैं, कि आज बाबा क्लास जल्दी लेगा और सबको कहो कि सब भोजन करके 7 बजे तक क्लास में आ जाए, भोजन करके। ये स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन थी क्योंकि बाबा को आभास था क्लास के बाद तो फिर उन्हें तो ड्रामा का जैसे आभास, यही क्लैरिटी है। जैसे भीष्म पितामह, भीष्म पितामह भी अपनी इच्छा से शरीर छोड़ा, तो ऐसे ही हम बच्चे भी भीष्म पितामह ब्रह्मा बाबा, तो ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रख के चलने वाले हम भी तो वही बच्चे हैं। हमें भी आभास हो जाएगा समय से पहले कि हाँ, अब हम ये पुराना शरीर छोड़ने वाले हैं और मैं आत्मा, अब इस शरीर में मेरा इतना ही लिमिटेड पार्ट है। तो इसलिए जल्दी जल्दी, क्योंकि अगर कोई अधूरा काम रह गया तो अंत समय वही याद आएगा। कोई भी व्यक्ति के लिए, किसी भी कारोबार के लिए, कुछ भी, इसीलिए बाबा कहता है सब काम को बच्चे फाइल सारी निपटाते चलो, जिससे वो काम याद ना आए। नहीं तो वो याद आया तो वहां पर तो अंत में बुद्धि अटक जाएगी और फिर तो अंत मते सो गति, यानी कि दुर्गति हो जाएगी। इसीलिए जो कोई भी काम है, विल बनाना है, कोई भी बतानी है किसी के पास, जहां हमारी बुद्धि जाती हो वो कार्मिक अकाउंट हम खत्म करते चले, क्योंकि कर्मों की गति बड़ी गुह्य है। इसीलिए ये देखना है कि कहीं पर हमारी बुद्धि जहां जाती है उन उनके कार्मिक अकाउंट को खत्म करते चले। और इस तरह बाबा ने उस दिन मुरली चलाई, हम भी सामने मुरली में बैठे हुए थे। ये 18 जनवरी की बात है। देखो हमारा कितना सौभाग्य, हम समझते हैं कि हम आसाम में पोस्टेड थे और अंत समय में बाबा ने हमें अपने पास बुला लिया। 17 जनवरी को पहुंच गए और 17-18 जनवरी को बाबा के सम्मुख ही थे। तो बाबा मुरली चला रहे थे हिस्ट्री हॉल में, हम भी बैठे हुए थे। बैठे बैठे हमारे मन में संकल्प आया कि बाबा कुछ हमारे लिए बोले कोई भी, क्योंकि जैसे अभी भी अव्यक्त बाप दादा आते हैं ना, तो बच्चों की दिल होती है कि चलो बाबा आए तो मुझे बाबा के हाथ से टोली मिल जाए, स्टेज पर जाने को मिल जाए, कोई बाबा की दृष्टि मिल जाए। तब तो बाबा साकार में होते थे, तो बस कि हाँ चलो बाबा से ना कि कोई संकल्प आया बाबा कुछ बोले। और बस देखो, भक्त के मन में कोई इच्छा होती है तो भगवान तक तुरंत पहुंचते हैं और भगवान उस इच्छा को पूर्ण करते हैं। भक्त कहता है, भक्त से पहले पूछते हैं क्या इच्छा है, भक्त अपनी इच्छा बताता है, भगवान के मुंह से एक ही शब्द निकलता है, कौन सा, तथास्तु, यानी तुम्हारे इच्छा पूरी हो, और फिर भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। ऐसे भक्ति में गायन है। तो भक्ति की सारी बातें तो यहीं की बनी हुई हैं। तो यहाँ बैठे बैठे हम सब लोग भी तो भक्त हैं। ब्रह्मा बाबा की आत्मा कृष्ण की आत्मा, कृष्ण के भक्त हम द्वापर युग से तो पुजारी ही रहे इतना जन्मों तक। और तो बाबा मन में संकल्प आया, अब बाबा तक पहुंचा और बाबा ने कुछ महावाक्य हमारा नाम लेके एकदम 18 जनवरी की रात्रि क्लास में उच्चार दिए, जो आज तक भी मुरली में रिकॉर्डेड है। और जब भी हम उन्हें सुनते हैं तो हमें भी एक वो चलता है, देखो ये भगवान के महावाक्य है और ये भक्ति मार्ग की जो बात है, भगवान सबकी इच्छा पूर्ण करता है। हम सब मुक्त थे, संकल्प आया और भगवान ने सिद्ध कर दिया। तो इस रीति से एक ये हुआ। फिर उसके बाद बाबा ने मुरली चलाई और उस दिन की मुरली की एक विशेषता थी 18 जनवरी की रात्रि क्लास। अब वैसे तो बाबा की काफी उम्र 93 ईयर की हो चुकी थी, सर्दी के दिन थे, कई बार बाबा को खांसी आती थी। 17 तारीख को भी सुबह शाम को देखा, खांसी में कई बार बाबा को बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन उस दिन देखा 18 की रात्रि क्लास। आप भी पेन ड्राइव में ले जाओ या सीडी मिलती है ऊपर, वो ले जाए तो देखेंगे एक बार भी न बाबा को खांसी आई, न गला साफ करने की जरूरत पड़ी, कुछ नहीं, इतना फ्लॉलेस मुरली इस तरीके से चली। वो इस बात का प्रतीक है कि शरीर के जो भी कर्म भोग होते हैं उन कर्म भोगों के ऊपर योग बल अंत समय में संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त हो कर लेता है। वो संपूर्णता का एक लक्षण है। कि शरीर का कर्म भोग होंगे लेकिन वो आपको परेशान नहीं करेगा, उसके ऊपर हमारा योग बल, जैसे ब्रह्मा बाबा का उस दिन देखा। और बस पूरा मुरली चलाई बाबा ने, एक बार भी न बाबा को खांसी आई न तकलीफ आई। तो खांसी रूपी परिस्थिति भी जो आती थी, और नॉर्मल केस में जब आती थी तो बाबा क्या करते थे, खांसी रूपी परिस्थिति, खांसी आई बाबा की आंखें गीली हो जाते थे, कई बार हम लोगों को लगता था बड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन बाबा के पिक्चर के पास ही ट्रांसलाइट का एक चित्र लक्ष्मी नारायण का और श्री कृष्ण का रखा रहता था। बाबा कहता था देखो बच्चे अभी तो ये पुराना तत्वों का बना हुआ पुराना शरीर है, खांसी है, तकलीफ होती है, लेकिन कल बाबा जाके ऐसा विष्णु कृष्ण बनेगा, नए तत्व होंगे, नया शरीर होगा, कोई भी व्याधि नहीं होगी, शारीरिक व्याधि कुछ नहीं। हम सब बच्चे देखो ऐसी दुनिया में जा रहे हैं तो बच्चों को तो खुशी होनी चाहिए, और क्या करना चाहिए खुशी में, खग्गियां मारनी चाहिए, ऐसे बाबा करके भी नॉर्मल केस में बताते थे। इतना बूढ़ा बाबा और ऐसे खुशी में आके कि परिस्थिति कैसी भी हो, विकट हो, सबसे बड़े से बड़ा पेपर तो शरीर का ही है, तो जितनी भी विकट परिस्थिति हो लेकिन हमारी स्थिति ऐसी हो कि किसी भी परिस्थिति पर हम विजय प्राप्त कर सके। तो पहले तो खांसी रूपी परिस्थिति विकराल होती थी, लेकिन धीरे 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 स्वस्थिति को बाबा मजबूत करते जाते थे और खांसी रूपी परिस्थिति भी कम होती जाती थी, और फिर जैसे बिल्कुल वही स्थिति आ जाती, बाबा मुरली चलाते थे। तो ये हमें भी संपूर्णता की तरफ इशारा करता है कि हमारे जीवन में भी बहुत परिस्थितियां आएंगी, कोई भी परिवार की है, शरीर की परिस्थिति है, बच्चों की तरफ से है, समाज की तरफ कोई भी आए, लेकिन परिस्थिति कितनी भी विकट हो लेकिन हमारी स्वस्थिति को हम इतना ऊंचा करते जाए कि परिस्थिति नीचे होती जाए और अंत में हमारी स्वस्थिति परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त कर। तो ये एक संपूर्णता के समीपता की अनुभूति जो बाबा ने सबको कराई, और अंत में बाबा क्लास के बाद गए, अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदाई लेता है, ऐसा बाबा ने कहा, और बस एक एक बच्चे को नैनों से निहाल किया, अच्छा बाबा छुट्टी लेता है। फिर बाबा कमरे में गए और दादी जी के हाथ में हाथ, दादी प्रकाशमणि भी साथ में थे, नैन मुलाकात की, और उसके बाद बस जैसे बाबा ने छुट्टी। तो हम ये अपनी इच्छा से शरीर छोड़ना ये साधारण नहीं है, तो दुनिया में कोई नहीं कर सकता, लेकिन हम बच्चों के लिए है कि बाबा बस हम जब भी जाएं हम अपनी इच्छा से ही शरीर, जैसे ब्रह्मा बाबा ने, अब ब्रह्मा बाबा इसलिए बोला ना बच्चे, ब्रह्मचारी तो बन गए, अब क्या बनना है, ब्रह्माचारी बनना है। ब्रह्मा बाबा ने जो किया, जो करके दिखाया, वैसा बनना है, वैसा करके दिखाना है, और अपनी इच्छा से भी जैसे ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, तो अंतिम एक दो दिन में पूरा आभास हो गया था, इसीलिए कोई भी कार्य जो बचे हुए थे सब बाबा ने पूरे किए गए, एक ये करते चले। और लास्ट में बाबा ने जैसे मन जीते जगत जीत तो है, लेकिन मन के साथ साथ हमें प्रकृति के ऊपर भी विजय प्राप्त करनी है, ये पांच तत्व, क्योंकि सबसे ज्यादा नाता तो हम आत्माओं का इस शरीर के साथ ही है, पांच तत्वों का बना हुआ शरीर है, सबसे बड़े से बड़ा नाता तो इसके साथ ही है, इसीलिए हमें इन पांच तत्वों को भी पवित्र करना है, रोज इनको भी हम योगदान करें। और मैं बताता हूँ, चलो बाबा, कई कहते हैं बाबा तो भाई भगवान का रथ, और मुझे याद है जानकी दादी ना 1999 दिसंबर की 31 तारीख थी, पिछला मिलेनियम वो खत्म हो रहा था और 2000 शुरू होने वाला था, उस दिन दादी की तबीयत बहुत खराब थी, जानकी दादी लोटस में थी, डॉक्टरों ने भी बहुत जैसे कि काफी जवाब दे दिया था, तबीयत बहुत खराब है, और यहाँ तो 31 दिसंबर को बाबा आते ही हैं, तो बाबा आए हुए थे, तो बाबा मुरली चलाने के बाद सब दादियाँ वरिष्ठ भाई बाबा से मिलते हैं ना, उस टाइम खास मिला करते थे, तो वो निर्वैर भाई और दादी प्रकाशमणि जी बाबा के सम्मुख थे। तो दादी भी बता रही थी, निर्वैर भाई बता रहे थे, बाबा दादी जानकी की तबीयत बहुत खराब है, डॉक्टर भी जवाब दे रहे हैं और बहुत ही वहाँ पर लोटस में हैं। तो बाबा ने सुना, अब बाबा ने एक ही लाइन बोली कि बच्चे वो आत्मा प्रकृति जीत आत्मा है, उसे कुछ नहीं हो। तो देखो आज से 20 साल पहले की बात लगभग, उसके बाद से, और दादी देखो 103 साल पूरे कर रहे हैं, 104 साल में प्रवेश कर रहे हैं, तो इतनी उम्र की भी होते हुए दादी कितनी भागा दौड़ी चारों तरफ, इतनी सेवा दादी के द्वारा हो रही है, लेकिन बाबा ने कहा कि प्रकृति जीत आत्मा है। तो हमारा शरीर भी जितना ज्यादा रहे, ये संगम युगी वैल्यूबल शरीर है, तो वो ज्यादा तभी रहेगा जब हम भी प्रकृति जीत बनेंगे। और प्रकृति जीत माने मन को भी तो हम शुद्ध बना ही रहे हैं, लेकिन मन के साथ साथ इन 5 तत्वों को भी हम पवित्र बनाते चलेंगे, तो क्या होगा, ये शरीर तत्व भी अंत तक हमारा साथ देंगे। और अंत तक साथ कैसे देंगे, उसके लिए ये शरीर तो 5 तत्वों का बना है ना, तो हर तत्व के साथ हम अपना मित्रता कर ले, जिससे वो तत्व जब अति हलचल में हो हमारी मृत्यु का कारण न बने। मानो ये है जल अग्नि वायु पृथ्वी आकाश, तो पृथ्वी का तत्व है, जब पृथ्वी हलचल में आती है कितना अर्थक्वेक होता है, कितना विनाश होता है, लेकिन अगर हमने पृथ्वी के तत्व के साथ मित्रता की होगी, मित्रता किनके बीच में होती है, जिनके गुण एक जैसे होते हैं, एक समान गुण वालों के बीच में मित्रता होती है। तो पृथ्वी का सबसे बड़ा गुण है दातापन का, पृथ्वी देती है हमेशा, पानी मिलता है, उसके भोजन मिलता है, गेहूं चावल सब अनाज वहां से मिलता है, दाल सब कुछ चीज, अब मिट्टी पेट्रोल है, तो ये सब चीजें दाता है। तो ऐसे ही हम पृथ्वी का एक गुण धारण कर ले कि पृथ्वी की तरह हम दाता बन जाए, कोई स्थूल चीज देने की बात नहीं, लेकिन हमारे सम्मुख जो आया उसे हम शांति प्रेम सद्भावना सद्भाव और उसके लिए जो भी है हमारा सहयोग, तो वो हम दाता बन के हरेक को देते चले, इनमें तो कुछ खर्चा होता नहीं। तो यानी कि पृथ्वी के इस तत्व की गुण धारण कर लिया, तो पृथ्वी कभी भी हमारी मृत्यु का कारण, जितना भी तेज अर्थक्वेक होगा हमें पहले से टचिंग हो जाएगी और हम उस स्थान को छोड़ देंगे। ऐसी जल तत्व का सबसे बड़ा गुण है क्या, एडजस्टमेंट। जल हर चीज के साथ एडजस्ट हो जाता है, गिलास में लो गिलास में सेट हो जाएगा, थाली में लो थाली में, चम्मच में लो चम्मच में, ऐसे ही हमारी भी नेचर ऐसी फ्लेक्सिबल हो, ऐसी एडजस्टेबल हो हमारा स्वभाव हो, हम हरेक के साथ एडजस्ट होके चल सकें। ये न कहें कि इनके साथ तो एडजस्ट होना मुश्किल है, इनके साथ आसान है, नहीं, हरेक के साथ एडजस्ट होके चल सकें, तो क्या होगा, जल हमारी अशांति मृत्यु दुख क्लेश का साधन कभी नहीं बन सकता। क्यों, क्योंकि जल का सबसे बड़ा गुण फ्लेक्सिबिलिटी, वो हमने धारण कर लिया। ऐसे हवा का गुण क्या है, हल्केपन का, कोई भी बात हो हल्का, हवा चीज ऊपर उठाती है, पृथ्वी हर चीज को खींचती है। ऐसे ही हर परिस्थिति में हम सदा हल्के रहें, भारी न हो, ये क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, नहीं होना चाहिए था, अब क्या होगा, नहीं, सदा हल्के रहें हर परिस्थिति में, तो वायु के जितने भी साइक्लोन आएंगे वो हमारे दुख अशांति मृत्यु का कारण नहीं बन सकते, क्योंकि वायु का तत्व का गुण धारण कर लिया और हल्केपन का, तो वायु हमेशा सदा साथ दे। ऐसी आकाश विशालता का गुण है आकाश में, तो ऐसे ही विशालता का भाव क्या है, किसी भी व्यक्ति की कोई कमी कमजोरी देखें, हम उसे दिल में ना बैठाएं, उसे माफ कर सके, क्षमा क्षमा करो और क्षमा मांग लो, जीत है इसमें हार नहीं, क्षमा वीरों का भूषण है, कायर का व्यवहार नहीं। जो कायर होगा, कमजोर होगा, वो क्षमा नहीं कर सकेगा। इसी तरीके से अंतिम पांचवा तत्व है सूर्य, गर्मी। तो उसका सूर्य का गुण क्या है? बस गर्मी देना, जीवन प्रदान करना। ऐसे ही जो है पृथ्वी का अग्नि का गुण होता है, उसमें कोई भी चीज डालो उसका रूप बदल जाता है। ऐसे ही हमारा ज्वालामुखी स्वरूप ऐसा हो कि कोई भी आत्मा आए उसका रूप बदल जाए। बाबा कहते हैं रोती हुई आत्मा आए हंसती हुई चली जाए, अशांत आत्मा आए शांति की अनुभूति करती हुई चली जाए। तो ये कब होगा? जब अग्नि की तरह ज्वालामुखी रूप होगा। तो ऐसे ही पांच तत्वों के ऊपर आप भी विचार करना और निकालना उनके क्या गुण हैं, और उन गुणों को हम धारण करते चलेंगे तो प्रकृति जीत हम सब आत्माएं भी बन जाए। ओम शांति, ओम शांति।